पृष्ठ संख्या 194, त्रयोदश अध्याय, कांट के आलोचनात्मक विज्ञानवाद का पांचवा भाग। अब कांट के व्यवहार और परमार्थ के भेद पर भी कुछ अधिक विचार कर लेना चाहिए। ज्ञान बनने के लिए इंद्रिय संवेदनों को देश काल के द्वारों में से निकलकर बुद्ध विकल्प के सांचों में ढलना पड़ता है। अतः ज्ञान की सामग्री के लिए संवेदनों का होना अनिवार्य है। ज्ञान का सत्यत्व संवेदनों से आता है, क्योंकि संवेदन परमार्थों द्वारा उत्थापित होते हैं। पृष्ठ संख्या 195। संवेदन जन्य ज्ञान के वास्तविक मूल रूप परमार्थ वस्तु जगत में विद्यमान होते हैं, किंतु संवेदनों में सार्वभौमता और अनिवार्य निश्चय नहीं हो सकता। यह बुद्ध विकल्पों से आता है। अतः हमारा ज्ञान सत्य और सार्वभौम होता है। इंद्रिय संवेदनों के कारण सत्य और बुद्ध विकल्पों के कारण सार्वभौम। गणित में सत्यता और सार्वभौमता देश काल के कारण आती है। भौतिक विज्ञानों में सत्यता और सार्वभौमता बुद्ध विकल्पों के कारण आती है। ज्ञान या अनुभव बिना बुद्ध विकल्पों के नहीं हो सकता। बुद्ध विकल्प इंद्रिय संवेदनों को संबद्ध करके उन्हें ज्ञान का विषय बनाते हैं। अतः हमारा ज्ञान देश और काल की सीमा से परिच्छिन्न और हमारे बुद्ध विकल्पों से निर्मित होता है। हम वास्तविक पदार्थों को, परमार्थों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि ये पदार्थ अतिंद्रिय हैं। हम इनके द्वारा उत्थापित संवेदनों को ज्ञान के रूप में परिणत करके उन्हें ही देख सकते हैं। हमारा जगत हमारे देश काल की सीमा से परिच्छिन्न और हमारे बुद्ध विकल्पों से निर्मित जगत है। यह वस्तु जगत नहीं है। अतः कांट व्यवहार और परमार्थ में स्पष्ट भेद करते हैं। हम व्यवहार को ही जान सकते हैं, परमार्थ को नहीं। व्यवहार का ज्ञान सत्य और निश्चित होता है, क्योंकि यह ज्ञान इंद्रिय संवेदनों को ज्ञान के रूप में परिणत करके बनाया गया है। और इस ज्ञान के संवादी पारमार्थिक पदार्थ वस्तु जगत में विद्यमान हैं। परमार्थ अतिंद्रिय है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः उसका कोई संवेदन नहीं होता। संवेदन के अभाव में ज्ञान के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत होती। संवेदन के अभाव में बुद्ध विकल्प भी परमार्थों पर लागू नहीं होते। संवेदन के अभाव में देश काल भी परमार्थों को परिच्छिन्न नहीं कर सकते। बुद्ध विकल्प अपनी शक्ति विशुद्ध ज्ञाता से लेते हैं, किंतु ज्ञान की सामग्री के अभाव में बुद्ध विकल्प सक्रिय नहीं हो सकते और विशुद्ध ज्ञाता से शक्ति लेने का प्रश्न भी नहीं उठता। अतः यह सिद्ध हुआ कि इंद्रिय संवेदनों के अभाव के कारण अतिंद्रिय परमार्थों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। यहाँ एक समस्या है। यदि परमार्थ वस्तुतः अज्ञेय है, तो तो हम यह भी नहीं जान सकते कि वह अज्ञेय है। अज्ञेयवाद भी संदेहवाद के समान आत्मघाती है। यदि परमार्थ तक बुद्ध विकल्पों की गति नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमार्थ वस्तुतः है और अज्ञेय है? इस प्रकार के कथन से हम परमार्थ को कम से कम सत्ता और ज्ञान के विकल्पों में तो जकड़ रहे हैं। परमार्थ के विषय में हमारा कम से कम इतना तो निश्चित ज्ञान है कि परमार्थ की सत्ता है और वह अज्ञेय है। फिर वह अज्ञेय कैसे हुआ? क्या यह वदतो व्याघात नहीं है? पृष्ठ संख्या 196। कांट इस विकट प्रश्न का उत्तर निर्भीक होकर इस प्रकार देते हैं। हम किसी वस्तु के विषय में दो प्रकार से विचार कर सकते हैं, एक तो विध रूप से और दूसरे निषेध रूप से। हमारा सत्य ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष पर आधारित है। प्रत्यक्ष सदा विधायक होता है, निषेधक नहीं। अतः सत्य ज्ञान भी सदा विध रूप ही होता है, निषेध रूप नहीं। यह सत्य है कि निषेध सदा विधान की अपेक्षा रखता है और उसी पर निर्भर रहता है, किंतु निषेध स्वयं ज्ञान रूप या सर्वथा अज्ञान रूप नहीं होता। निषेध वस्तुतः ज्ञान की सीमा है, निषेध सर्वथा अज्ञान रूप नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस वस्तु के ज्ञान का निषेध किया जाता है, वह सर्वथा अज्ञेय नहीं है। यदि वह सर्वथा अज्ञेय हो तो उसका निषेध भी नहीं हो सकता। निषेध का अर्थ इतना ही है कि हमारे ज्ञान की सीमा उस वस्तु तक जाकर समाप्त हो जाती है। ज्ञान को स्वयं अपनी सीमा का ज्ञान होता है और इसमें कोई विरोध नहीं। जिस प्रकार निषेध सर्वथा अज्ञान रूप नहीं है, उसी प्रकार निषेध वस्तुतः ज्ञान रूप भी नहीं है। है तो वह अज्ञान ही, क्योंकि ज्ञान सदा विध रूप होता है। यदि कोई कहे मैं अमूक वस्तु को निषेध रूप से जानता हूँ, तो इस वाक्य का अर्थ केवल यही है, मैं अमूक वस्तु को नहीं जानता। निषेध रूप ज्ञान और अज्ञान दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों में विधान का अभाव है। फिर भी निषेध रूप ज्ञान सर्वथा अज्ञान नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान की सीमा का ज्ञान है। इस प्रकार विधि और निषेध का प्रतिपादन करके कांट यह बताते हैं कि परमार्थ को भी हम इन दो रूपों में देख सकते हैं। परमार्थ का विधि रूप ज्ञान असंभव है, क्योंकि विधि रूप ज्ञान सदा इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प इन दोनों पर निर्भर रहता है और इन दोनों की गति परमार्थ तक नहीं है। किंतु परमार्थ का निषेध रूप ज्ञान संभव ही नहीं, अपरिहार्य भी है, क्योंकि यह निषेध रूप ज्ञान हमारे ज्ञान की सीमा का ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे ज्ञान की गति परमार्थ तक नहीं, यह नेति नेति वस्तुतः व्यवहार और परमार्थ की सीमा है। यह नेति नेति न तो परमार्थ का निषेध करती है और न व्यवहार का अतिक्रमण। अनिर्वचनीय परमार्थ का सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेति है। इससे परमार्थ के विषय में किए जाने वाले निर्वचनों का निषेध होता है, स्वयं परमार्थ का निषेध नहीं होता। परमार्थ का निषेध रूप ज्ञान केवल ज्ञान की सीमा का ज्ञान है। यह वस्तुतः परमार्थ का ज्ञान नहीं है। अतः परमार्थ को अनिर्वचनीय और बुद्धि द्वारा अगम्य कहने में किसी प्रकार का विरोध या वदतो व्याघात नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शक्ति ज्ञान को अपनी सीमा का ज्ञान करने से नहीं रोक सकती। पृष्ठ संख्या 197। परमार्थ को अनिर्वचनीय और अज्ञेय मान लेने पर भी कांट के सम्मुख एक जटिल समस्या रह जाती है। वह यह है, यदि परमार्थ अज्ञेय है तो क्या व्यवहार निराभ्रम या कोरी कल्पना नहीं है? यदि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय हमारे इंद्रिय संवेदन ही हैं, तो दृष्ट सृष्टिवाद से और सर्वाहमवाद से रक्षा किस प्रकार हो सकती है? हम देख चुके हैं कि बर्कले के सामने भी यही समस्या थी और उन्होंने अपनी रक्षा ईश्वर की शरण लेकर की। बर्कले के अनुसार हमारे संवेदन ईश्वर के विज्ञान हैं। हम जगत का निर्माण नहीं करते, इसीलिए भिन्न भिन्न जीव एक ही जगत का अनुभव करते हैं। इस प्रकार बर्कले ने अपनी रक्षा दृष्ट सृष्टिवाद और सर्वाहमवाद से कर ली, किंतु कांट के सम्मुख तो अभी तक ईश्वर का प्रश्न नहीं उठा है। फिर कांट अपनी रक्षा इन दो ग्रहों से किस प्रकार करते हैं? ह्यूम के अज्ञेयवाद को अंशतः अपना कर भी कांट इन ग्रहों से किस प्रकार बच सकते हैं? कांट ने इनसे बचने के लिए विशुद्ध ज्ञाता की शरण ली। बुद्ध विकल्पों में ज्योति और शक्ति विशुद्ध ज्ञाता से आती है। विशुद्ध ज्ञाता हमारे समस्त ज्ञान और अनुभव का एकमात्र अधिष्ठान है। विभिन्न जीवों में इसी प्रकाश का और इसी की शक्ति है। अतः विभिन्न जीवों का व्यवहारिक जगत भिन्न भिन्न नहीं होता और न विभिन्न जीव अपने व्यवहारिक जगत की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार कांट दृष्टि सृष्टिवाद और सर्वाहमवाद से अपनी रक्षा कर लेते हैं, किंतु अभी एक प्रश्न और रह जाता है। यह हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे इंद्रिय संवेदन वास्तविक अज्ञेय बाह्य पदार्थों से उत्थापित होते हैं? क्या कांट का यह अज्ञेय बाह्य परमार्थ लॉक के अज्ञेय बाह्य पदार्थ का, जिसे बर्कले ने बुद्धि शून्य जड़ कहकर उपहासपद और असंभव सिद्ध किया था, परिवर्धित और संशोधित संस्करण नहीं है? जब परमार्थों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे संवेदनों के मूल रूप परमार्थ वस्तु जगत में विद्यमान हैं? बिंब के ज्ञान के अभाव में प्रतिबिंब को भी प्रतिबिंब कैसे कहा जा सकता है? इस प्रश्न का कांट ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इंद्रियों का संवेदनों के रूप में ज्ञान की सामग्री उपस्थित करना देश काल के द्वार से इस सामग्री का निकलना और बुद्ध विकल्पों के सांचों में ढलकर सार्वभौम और निश्चित ज्ञान का रूप लेना, बुद्ध विकल्पों की शक्ति का विशुद्ध ज्ञाता से आना, विशुद्ध ज्ञाता का स्वतः सिद्ध अनिर्वचनीय अद्वय अपरोक्षा अनुभूति रूप होना और समस्त ज्ञान या अनुभव का एकमात्र अधिष्ठान बनना, जीवो और बाह्य जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता होना, इंद्रिय संवेदनों और बुद्ध विकल्पों की अतिंद्रिय तथा अवांग मनोगोचर परमार्थ तक गति न होना आदि सिद्धांत तो सत्य है। पृष्ठ संख्या 198। किंतु संवेदनों को प्रसूत करने वाले अनेक अज्ञेय जड़ बाह्य परमार्थों की कल्पना करना विशुद्ध ज्ञान को भी संवेदन सापेक्ष मानना, संवेदनों के अभाव में विशुद्ध ज्ञाता को भी बेकार कर देना, विशुद्ध ज्ञाता का अज्ञेय बाह्य परमार्थों के साथ कोई संबंध स्थापित न करना, व्यवहार और परमार्थ के द्वैत को पारमार्थिक बना देना आदि दोष कांट के मत में रह गए हैं, जिनका कांट कोई संतोषजनक समाधान नहीं कर पाए। इस विषय में कांट का एकमात्र उत्तर यही है कि संवेदनों को प्रसूत करने वाले पारमार्थिक अर्थों की सत्ता तो अवश्य है, किंतु वे अज्ञेय हैं और उनके विषय में कुछ भी अधिक कहना व्यर्थ है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि कांट उपर्युक्त दोषों का समुचित निराकरण नहीं कर सके, तथापि दृष्ट सृष्टिवाद और सर्वाहमवाद के दोषों से तो वे पूर्णतया बच गए हैं। यद्यपि हमारे बुद्ध विकल्प प्रकृति का निर्माण करते हैं, तथापि इस कार्य के लिए वे इंद्रिय संवेदनों पर निर्भर रहते हैं और ये संवेदन अज्ञेय परमार्थों द्वारा उत्थापित किए जाते हैं। अतः जगत न तो हमारी कल्पना है और न विभिन्न जीवों के जगत भिन्न भिन्न हैं। व्यवहारिक ज्ञान में सत्यत्व सार्वभौम निश्चय एवं अनिवार्यता होती है। बुद्ध विकल्पों के नियम वस्तु जगत में लागू होते हैं। व्यवहार हमारी भ्रांति नहीं है। यह सत्य है कि व्यवहार परमार्थों का ज्ञान नहीं है और वह देश काल तथा बुद्ध विकल्प द्वारा निरूपित होता है। तथापि इस ज्ञान की सामग्री इंद्रिय संवेदनों द्वारा प्रस्तुत की जाती है और ये इंद्रिय संवेदन परमार्थों द्वारा उत्थापित होने के कारण सत्य हैं। यदि यह स्वप्न भी हो तो समस्त का स्वप्न है और इसलिए यथार्थ है। जिस स्वप्न को सब लोग उसी रूप में देखते हैं और देखने के लिए बाध्य हैं, वह स्वप्न नहीं है। कांट ने व्यवहार के भी दो भेद कर दिए हैं, एक तो समष्टि व्यवहार या प्रकृति और दूसरा व्यष्टि व्यवहार। समष्टि व्यवहार या फिनोमिना प्रकृति है, जिसमें हमारे ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है। यह बुद्ध विकल्पों द्वारा नियमित और संबद्ध सामूहिक संवेदन पुंज है। इसकी स्थिति देश काल में है और इसके सार्वभौम तथा अनिवार्य नियम हैं। व्यक्त विशेष द्वारा अनुभूत न होने पर भी प्रकृति की सत्ता वैसे ही बनी रहती है। व्यक्ति के अनुभव के पूर्व और पश्चात भी यह प्रकृति अपने नित्य रूप में बनी रहती है। व्यस्त व्यवहार या आवर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फिनोमिना वह है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुभूत होता है। पृष्ठ संख्या 199। इस प्रकार कांट ने परमार्थ, समष्ट व्यवहार और व्यस्त व्यवहार ये तीन भेद स्वीकार किए हैं। उदाहरणार्थ, परमार्थों में कोई गति नहीं है, केवल गति उत्पन्न करने की शक्ति है। समष्ट व्यवहार में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। व्यस्त व्यवहार में सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम दिशा में जाकर अस्त होता है। कभी कभी कांट परमार्थ और व्यवहार ये दो भेद मानते प्रतीत होते हैं, तब समष्ट व्यवहार व्यस्त व्यवहार के अंतर्गत मान लिया जाता है।